आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। मंत्रिपरिषद की बैठक में सोयाबीन उपार्जन नीति को मिली मंजूरी, कल से 20 अक्टूबर तक किसानों का होगा पंजीयन। मुख्यमंत्री दशहरे पर महेश्वर में करेंगे शस्त्र पूजा, 5 अक्टूबर को संग्रामपुर में होगी कैबिनेट की बैठक। स्वच्छता ही सेवा के तहत प्रदेश में कार्यक्रमों का आयोजन जारी। और प्रदेश में मॉनसून एक बार फिर हुआ सक्रिय, बैतूल, खरगोन, अलीराजपुर सहित 6 जिलों में वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्रिपरिषद द्वारा अनुबंधित एजेंसी से सिंहस्थ 2028 के आयोजन के लिए समय सीमा में कार्य पूर्ण करने की महती आवश्यकता के दृष्टिगत प्रो रेटा आधार पर कान डायवर्जन क्लोज डक्ट परियोजना को लागत राशि 919.94 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी गई। इससे दूषित जल को पवित्र क्षिप्रा नदी में मिलने से रोकने संबंधी विकास कार्य किए जाएंगे। मंत्रिपरिषद द्वारा केंद्र सरकार के प्राइस सपोर्ट स्कीम अंतर्गत सोयाबीन का पंजीकृत किसानों से उपार्जन राज्य उपार्जन एजेंसी मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित द्वारा किए जाने का निर्णय लिया गया। इसके लिए किसानों का 25 सितंबर से 20 अक्टूबर तक पंजीयन होगा और खरीदी 25 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक की जाएगी। सोयाबीन का 1400 उपार्जन केंद्रों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल 4,892 रूपये की दर से उपार्जन किया जाएगा। इसके साथ ही नीमच के भाटखेड़ा से डूंगलावदा तक 4 लेन सीमेंट कंक्रीट रोड को स्वीकृति प्रदान की गई। विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष द्वारा आयकर स्वयं भरने संबंधी अधिनियमों में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है। मंत्रिपरिषद द्वारा नवीन विधायक विश्राम गृह निर्माण के लिए 159.13 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव स्त्री शक्ति और सामर्थ्य को नमन के प्रतीक स्वरूप लोकमाता अहिल्या देवी की राजधानी महेश्वर में दशहरे पर शस्त्र पूजन करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि आगामी 5 अक्टूबर की मंत्रिपरिषद की बैठक दमोह जिले के संग्रामपुर में होगी। यह रानी दुर्गावती के प्रति राज्य सरकार के सम्मान का प्रकटीकरण है। मुख्यमंत्री ने आज मंत्रिपरिषद की बैठक के पहले अपने संबोधन में यह बात कही। मुख्यमंत्री को लंदन की T4 एजुकेशन संस्था द्वारा रतलाम के विनोबा सीएम राई स्कूल को विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्कूल पुरस्कार 2024 के नवाचार श्रेणी में शीर्ष 3 फाइनलिस्ट में शामिल होने संबंधी प्रमाण पत्र सौंपा गया। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा है कि अगली रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव 27 सितंबर को सागर में होगी। इसी क्रम में रीवा, नर्मदापुरम और शहडोल में भी दिसंबर 2024 तक क्षेत्रीय इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि कोलकाता के रोड शो और परिचर्चा सत्र में 700 से अधिक उद्योगपतियों और निवेशकों ने सहभागिता की और प्रदेश में लगभग 20,000 करोड़ रूपये का निवेश संभावित है, जिससे लगभग 10,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। केंद्र में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरा होने पर नरसिंहपुर जिले के किसानों ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि 2014 से जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है तब से किसानों के जीवन में बड़ा बदलाव आया है और उनकी आर्थिक स्थिति में काफी सुधार हुआ है। इसके साथ ही साथ पीएम आवास जैसी योजनाओं का लाभ भी किसानों को मिला है, जिससे किसानों के जीवन स्तर में बदलाव आया है।
देश में बहुत बेनिफिट मिल रहा है, बढ़िया 2,000 रूपये आ रहा है, उसमें बढ़िया खाद वगैरह हो रहा है और समय पर बोनी बखंडी हो रही खादे एवं और 0% ब्याज है। बहुत बदलाव आया जब से मोदी सरकार आई है, काफी बदलाव। अभी तो सब फ्री चल रहा है, जैसे 2,000 रूपये देना और समाज से ये खाद वगैरह का पैसा आ रहा।
प्रदेश में ग्रीष्मकालीन मूंग उड़द के उत्पादन में अत्यधिक रासायनिक कीटनाशक उर्वरकों के उपयोग को कम करने के उद्देश्य से मंत्रिपरिषद समिति का गठन किया गया है। समिति प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता लाने का काम करेगी। मंत्रिपरिषद समिति में लोक निर्माण विभाग मंत्री राकेश सिंह, परिवहन और स्कूल शिक्षा विभाग मंत्री उदय प्रताप सिंह, किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग मंत्री एदल सिंह कंशाना और लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग राज्य मंत्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल सदस्य होंगे।
ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब एक्स प्लेटफॉर्म और फेसबुक पर एआईआर न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। स्कूल शिक्षा विभाग के राज्य शिक्षा केंद्र ने शैक्षणिक सत्र 2024-25 में प्रदेश की समस्त शासकीय शालाओं, मान्यता प्राप्त अशासकीय अनुदान प्राप्त शालाओं और डाइस कोड प्राप्त मदरसों में कक्षा 5वीं और 8वीं के लिए एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित पाठ्य पुस्तकों और पाठ्यक्रम के आधार पर परीक्षा के आयोजन के संबंधित निर्देश जारी किए हैं। इसमें परीक्षा परिणाम के लिए अधिभार अंक निर्धारित किए गए हैं। परीक्षा आयोजन संबंधी समय समय पर जारी निर्देश मध्य प्रदेश राज्य एजुकेशन पोर्टल पर देखे जा सकते हैं। छिंदवाड़ा जिले में स्वच्छता ही सेवा है की परिकल्पना को साकार करने के लिए बिछुआ के ग्राम उलावाड़ी में स्वच्छता का संदेश दिया गया। इस अवसर पर ग्राम पंचायत के द्वारा सफाई कार्य में छात्रों और ग्रामीण जनों ने श्रमदान किया। जिले के शासकीय कार्यालयों परिसरों में कल मेरा कार्यालय स्वच्छ कार्यालय थीम पर मेगा सफाई अभियान संचालित किए जाएंगे। जिले के परासिया नगर पालिका कार्यालय आज सफाई कर्मियों का स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाया गया। इसी तरह विदिशा में नगर पालिका द्वारा नगर के विभिन्न वार्डो में सफाई मित्रों द्वारा विशेष सफाई कार्य किया गया। आज अनेक वार्डों में विशेष सफाई कराई गई, साथ ही पेड़ों की छटाई सहित कचरा एकत्रित किया गया। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को प्रभावी और प्रतियोगी बनाने के लिए एशियाई विकास बैंक एडीबी पूरा सहयोग करेगा। इंडिया रेजिडेंट मिशन का नेतृत्व कर रही एडीबी की कंट्री डायरेक्टर सुश्री मियो ओका ने कहा कि पिछले ढाई दशकों में मध्य प्रदेश के शानदार प्रदर्शन और बढ़ती अर्थव्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए विकास के नए क्षेत्रों में प्रदेश के साथ भागीदारी को और आगे ले जाएंगे। सुश्री ओका एशियाई विकास बैंक और मध्य प्रदेश विकास के क्षेत्र में परस्पर सहयोग की 25 साल की साझेदारी की वर्षगांठ पर भोपाल में आज आयोजित कार्यशाला को संबोधित कर रही थी। इस अवसर पर पिछले 25 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में एडीबी के निवेश पर केंद्रित पुस्तिका को भी लॉन्च किया गया। दमोह जिले के कटनी स्टेट हाईवे पर समन्ना गांव के पास आज एक तेज रफ्तार ट्रक और ऑटो रिक्शा के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस अधीक्षक श्रुतकीर्ति सोमवंशी ने बताया कि ऑटो में 10 लोग सवार होकर बांदकपुर दर्शन करने के लिए जा रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि इस भीषण सड़क हादसे में लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि राज्य शासन की ओर से मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। बात मौसम की। प्रदेश में एक बार फिर मॉनसून सक्रिय हो गया है। आज से अगले 3 दिन तक प्रदेश में तेज बारिश का दौर बना रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया सक्रिय हो गया है। इस वजह से प्रदेश के दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों में बारिश का दौर चलेगा। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 24 घंटे के दौरान झाबुआ, धार, बड़वानी, इंदौर, खरगोन, बैतूल, पांडोना, बालाघाट सहित तेज बारिश का अलर्ट है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सीहोर जिले में आयुष्मान पखवाड़ा के अंतर्गत कल 25 सितंबर को विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। इन ग्राम सभाओं में गांवों के 70 वर्ष से अधिक आयु वाले वृद्धजनों का चिन्हांकन कर उनकी आभा आईडी बनाई जाएगी। और बैतूल जिले की आमला जनपद पंचायत में कल सामाजिक न्याय और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा दिव्यांगजनों के लिए निःशुल्क सहायक उपकरण वितरण शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस भी मनाया गया। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मंत्रिपरिषद की बैठक में सोयाबीन उपार्जन नीति को मिली मंजूरी। कल से 20 अक्टूबर तक किसानों का होगा पंजीयन। मुख्यमंत्री दशहरे पर महेश्वर में करेंगे शस्त्र पूजा। 5 अक्टूबर को संग्रामपुर में होगी कैबिनेट की बैठक। स्वच्छता ही सेवा के तहत प्रदेश में कार्यक्रमों का आयोजन जारी। और प्रदेश में मॉनसून एक बार फिर हुआ सक्रिय। बैतूल, खरगोन, अलीराजपुर सहित 6 जिलों में वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।